गुड मॉर्निंग। राजयोग के प्रातःकालीन सत्र में आए हुए आप सभी महान आत्माओं का हम डायमंड हॉल में स्वागत करते हैं। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। अपने लिए बजाना है तो खुशी से बजा दीजिए, जोरदार ताली। अब हमारे बीच आदरणीय गीता दीदी जी उपस्थित हैं। आप सभी महान आत्माओं से अनुरोध है, जोरदार करतल ध्वनि से हम दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वैसे तो आपने हर रोज देखा होगा जिंदगी में किस पहचान के साथ आप कार्य कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या है। आज स्वयं भगवान ने एक नई पहचान दी है। वो नई पहचान कौन सी है, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है? स्वयं भगवान ने जो दिव्य ज्ञान दिया, परमात्मा का दिव्य ज्ञान, हम गीता दीदी जी के माध्यम से उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे। अपने बारे में एक नया परिचय, कौन कौन उत्सुक है प्राप्त करने के लिए, एक न्यू इंट्रोडक्शन। तो कितनी खुशी की बात है, देखिए बाबा ने, परमात्मा ने जो दिव्य ज्ञान सुनाया, एक नया इंट्रो हमारे लिए दिया है, तो वो हम दीदी जी के माध्यम से सुनेंगे जिससे हमारे सारे तनाव मिट सकते हैं। तो अभी जो दीदी जी का क्लास होगा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और दीदी जी का ये जो इतना अनुभव है, 69 से आप राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे महान विभूति, महान तपस्वी हमारी गीता दीदी जी हमारे बीच उपस्थित है, ऐसे पहला क्लास आपको मिलेगा गीता दीदी के द्वारा। आप सब कितना लकी हो, अपने लिए ताली बजा दो, लकी हो ना। तो इतना अपने अनुभव के माध्यम से पहला कदम आपका रखवाएंगे आदरणीय गीता दीदी जी के लिए, वैश्विक यूनिटी के लिए। आज जो हमारे बीच में नई पहचान देने के लिए दीदी जी आए हैं, तो आत्मा की पहचान ये हम सुनेंगे आदरणीय गीता दीदी के द्वारा।
ओम शांति। सभी मिलकर प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति का अर्थ है आत्म शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप है, ये स्मृति बार बार दोहराने से हमारी शांत स्थिति बनेगी, हम दूसरों को भी शांति का रास्ता दिखा सकेंगे। मनुष्य के मन में प्रथम जिज्ञासा ये उत्पन्न हुई कि को हम, मैं कौन हूँ। प्रत्येक धर्म में इस बात का महत्व रखा है कि नो थाई सेल्फ, खुद को जानेंगे तो खुदा को भी पहचान सकेंगे। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपने एक काव्य में कहा है कि अंतर मम विकसित करो। वो हमारा आंतरिक स्वरूप क्या है, क्या हम अपने आप को जानते हैं? शारीरिक परिचय तो जन्म के 6 दिन के बाद ही हमें नाम मिल जाता है। हमें अपने परिवार का परिचय मिल जाता है, माँ ही सबका परिचय हमें कराती है कि ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये तुम्हारी बहन है। परिचय लौकिक परिवार का तो मिल जाता है। यही कारण है कि हम इस दैहिक परिचय के भान में रहते हैं। हमें अपने एजुकेशन का, ऑक्यूपेशन का, अपने डेजिग्नेशन का परिचय रहता है। तुम ये पढ़े हो, इतना पढ़े हो, तुम इस कंपनी में इस पोस्ट पर हो, तुम्हारा गवर्नमेंट नौकरी है, इस प्रकार से हमें अपना एजुकेशन का, नौकरी का अभिमान रहने लगता है। हम अपने रिलेशन के अभिमान में रहते हैं। मैं पिता हूं, पता है मैं फलाने का पुत्र हूं, मैं फलाने की मिसिस हूं, मैं इनकी सास हूं। संबंधों के अभिमान में हम कामकाज करते हैं। अगर दिन भर के कार्यों में हम देखें, कुछ एक कार्य में हमें अपने नाम, रूप, रंग और आयु का अभिमान रहता है कि मैं सुंदर हूं, मैं साधारण हूं, मैं गोरी हूं, मैं श्याम हूं। हमें अपने मैं युवा हूं, ये बूढ़े हैं, इस प्रकार हमें नाम, रूप, रंग, आयु की कॉन्शियसनेस रहती है। संबंधों के भान में हम आते हैं। हमें अपने पोस्ट, पोजीशन, प्रतिष्ठा का अभिमान रहता है। इस प्रकार और भी विस्तार से देखें तो हमें देह के धर्म का अभिमान रहता है। कुछ कहेंगे हम क्रिश्चियंस हैं, कुछ कहेंगे हम मुस्लिम्स हैं, बौद्धिस्ट हैं, हम हिंदू हैं। अपने परिवार का जो धर्म होता है, वहां जन्म लेने से हम समझते हैं यही हमारा धर्म है। जाति ज्ञाति का भी अभिमान रहता है कि हम अगड़ी जाति के हैं, ये पिछड़ी जाति के हैं, हम ऊंचे कुल के हैं, ये हल्के कुल के हैं। इस प्रकार देह के कुल, जाति ज्ञाति का अभिमान रहता है और हरेक को हम उसी नजर से देखते हैं। हम तो ब्राह्मीन हैं, हम बनिया हैं, हम राजपूत हैं और उसी कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं। भाषा का अभिमान, हम तेलुगु हैं, तमिल हैं, मलयालम हैं, हम कन्नड़ हैं, इस प्रकार भाषा का अभिमान रहता है। जो बॉर्डर एरिया है उसमें भाषा के कितने झगड़े चलते हैं, प्रांत भेद, भाषा भेद, नेशनलिटी का भेद, हम इंडियंस हैं, ये चाइनीज है, ये अमेरिकन है। हरेक को अपने अपने नेशनलिटी का अभिमान रहता है। तो पूरी दिनचर्या को हम देखें, हम कर्म करते करते देह अभिमान में रहते हैं, अपने आप को देह समझते हैं। हमारा जीवन सांसारिक बन गया है, इस भौतिक जगत के कॉन्शियस में हम आ गए हैं। हमें हमारा जीवन भोगवादी बन गया है, भौतिकवादी बन गया है। प्रतिदिन के 24 घंटे का आप हिसाब लगाइए तो दिनचर्या के 24 घंटों में 12 घंटे खाने पीने, नहाने धोने और सोने के पीछे खर्च होता है। 50% टाइम सोना खाना पीना नहाने धोने में ही खर्च हो जाता है। बाकी के 12 घंटे में से कितने घंटे नौकरी धंधे के पीछे जाता है। दूर दूर हमारी कंपनी ऑफिस है, वहां से जाना आना करने में कितना टाइम जाता है। हम कह सकते हैं हमारे 8-10 घंटे नौकरी धंधे के पीछे, आना जाना के पीछे खर्च होता है। भल बहने भी आजकल नौकरी करने लगी है, परिवार खर्च उठाने में मददगार बनती है, परंतु फिर भी घर काम करने में, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, घर की सफाई करना, इन कामों में कितने पैसे खर्च होते हैं। तो ये भी 8-10 घंटे हम सब के, चाहे घर काम संभालने में या नौकरी धंधे में, आने जाने में खर्च होता है। अब 2-3 घंटे बाकी रहे, वो हमारे टीवी, रेडियो, मोबाइल, कंप्यूटर, इस साधनों को ऑपरेट करने में और उनके द्वारा मिलती हुई इन्फॉर्मेशन में हम लगे रहते हैं। आजकल तो कहते हैं ना, टेलीफोन और मोबाइल का मैनिया लगा हुआ है। कुछ भी नहीं तो क्या समाचार आया है, देखने में ही हम कितना टाइम ऑन ऑफ करते रहते हैं। तो हमारे 24 घंटे प्रतिदिन के दिन रात हम लौकिक कार्यों में, मनोरंजन में, सब टीवी मोबाइल को देखने में खर्च हो जाते हैं। हमारे 8 घंटे सोने में खर्च होते हैं। तो इस ऐसी दिनचर्या को देखते हुए हम कह सकते हैं हमारा जीवन सांसारिक बन गया है, देह अभिमान युक्त बन गया है और हम भोगवादी भौतिकवादी बन गए हैं। अगर हम यहां अपना स्व कल्याण, सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए आए हैं और यहाँ आपको शांति का वातावरण भी उपलब्ध है, शांति से बैठकर हम मन में ये सोचे क्या हम शरीर हैं। अब मेडिकल साइंस ने हमें समझा भी दिया है, परंतु हम अपने को देह समझते हैं, देहभान रहते हैं, देह के संबंधों में कॉन्शियस रहते हैं, परंतु वास्तव में हम शरीर हैं। यहाँ स्क्रीन पर बताया है कि शरीर तो हड्डी, मांस, चमड़ी और लहू से बना हुआ एक ढांचा है। क्या हम हड्डी मांस हैं या हड्डी मांस चमड़ी लहू से अलग चैतन्य शक्ति है? यही बात दूसरी विज्ञान की भाषा में हम कहे तो शरीर पंच तत्वों का बना हुआ एक पुतला है, प्रकृति के पंच महाभूत है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, ये पांच भूतों का शरीर बना हुआ है। और जब कोई डेड बॉडी को अग्नि संस्कार देते हैं तो संस्कृत में कहा जाता है कि पंचत्वम गतः, पांच तत्वों का बना हुआ शरीर पुनः पांच तत्व में मिल जाता है। हम आम भाषा में कहते हैं कि मिट्टी का बना हुआ मानव शरीर पुनः मिट्टी में मिल गया, पर मनुष्यात्मा, जीवात्मा जब हम कहते हैं तो हम दो अस्तित्व मिला करके कहते हैं। पांच तत्वों का बना शरीर प्लस चैतन्य शक्ति आत्मा मिलाकर मनुष्यात्मा जीवात्मा कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी प्लस बीइंग मिलाकर ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। अब ह्यूमन बॉडी तो प्रकृति के पांच तत्वों से बनी हुई है, वो जड़ है, स्थूल है, इसलिए हम इन आंखों से देख सकते हैं। लेकिन मानव शरीर प्लस चैतन्य शक्ति आत्मा जिसको कहा जाता है, इस आत्मा का परिचय नहीं है, क्योंकि हम इन आंखों से आत्मा को नहीं देख सकते हैं। जब कोई आत्मा शरीर छोड़कर जाती है, देह से निकल जाती है, तो हम कहते हैं कि लाइट हैज गोन, ज्योति बुझ गई, और तुरंत हम उस डेड बॉडी के आगे बाहर का दीपक जलाकर रख देते हैं, क्योंकि चैतन्य शक्ति आत्मा निकल गई तो हम वो दीवा जलाकर रख देते हैं। आत्मा जब तक शरीर में है, हम कर्मेंद्रियों से काम करते हैं, आँखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुख द्वारा बोलते हैं, पर आत्मा निकल जाने के बाद यही कर्मेंद्रियां डेड हो जाती है, डेड बॉडी कहते हैं। कोई व्यक्ति बीमार है, हम उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं, हम पेशेंट को लेके आए हैं, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कहता है, हम पेशेंट को ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में दाखिल करते हैं, पर मान लो ऑपरेशन फेल हुआ, हम डेड बॉडी को लेके आते हैं। तो डेड बॉडी और ऑपरेशन पेशेंट में क्या फर्क है? चैतन्य शक्ति आत्मा निकल गई तब वो डेड बॉडी को डेड बॉडी हम कहते हैं। तो वो ही ऑर्गन्स इस शरीर में तुरंत निकाल के कोई चैतन्य मनुष्य आत्मा में लगाते हैं, वो आंखें भी काम करती हैं, वो जीभ भी काम करती है, वो हार्ट भी काम करता है, वो लीवर भी काम करता है, वहां वो सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, पर यहां बॉडी डेड हो गई है। इसलिए क्योंकि आत्मा निकल गई, जो कर्म कराने वाली चैतन्य शक्ति है वो निकल गई, तो हम इस डेड बॉडी को जला देते हैं, दफना देते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि अविनाशी आत्मा शरीर से निकल गई तो हम ऑर्गन्स आजकल डोनेशन कर देते हैं, पैसे कमाते हैं, अथवा वो ही ऑर्गन्स देने से उस शरीर में काम आते हैं। तो हमारा अस्तित्व चैतन्य शक्ति और शरीर से बना हुआ है। शरीर है भौतिक शक्ति, पांच तत्वों का बना हुआ, इसलिए आत्मा इस भौतिक तत्वों से बनी हुई भौतिक दुनिया में आकर भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर धारण करती है। शरीर देखने में आता है, चैतन्य शक्ति दिखाई नहीं देती। जैसे बल्ब देखने में आता है, ट्यूब देखने में आती है, ये हीटर गर्मी दे रहे हैं, ये पंखे चल रहे हैं, परंतु सत्यता क्या है? सत्यता क्या है? बिजली की शक्ति पंखे को चला रही है, बिजली की शक्ति से हीटर चल रहे हैं, बल्ब प्रकाश दे रहा है, ट्यूब लाइट दे रही है। देखने में साधन आते हैं, परंतु वास्तव में ये चलते हैं बिजली की शक्ति से, अणु शक्ति से। तो इस प्रकार शरीर भौतिक है, वो ही बिजली की शक्ति सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो ही प्रकाश में, गर्मी में और कर्म शक्ति में बदल के अनुभव होती है। इस प्रकार शरीर तत्वों का बना जड़ है, दिखाई देता है स्थूल है। चैतन्य शक्ति आत्मा क्या है? हम मन को कहते हैं सोचने की शक्ति। हम बुद्धि से निर्णय करते हैं और वो ही संस्कार के रूप में आत्मा में धारण होते हैं। हम कर्म करते हैं, हमें अनुभव होता है, हमें वो स्थान याद आता है। कोई सुंदर स्थान आप देख के आते हैं, परंतु घर आकर भी उस स्थान की सुंदरता हमें याद रहती है। किसको याद रहती है? आत्मा को इसकी स्मृति रहती है। हम कोई स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं, मुख ने खाके मुख में अभी वो पदार्थ नहीं है, वो खाके हमने पूरा कर लिया, परंतु फिर खाने की इच्छा होती है। वो इच्छा किसको होती है? सुख दुख का अनुभव कौन करती है? हमें दूसरों के प्रति, उनके दुख दर्द के प्रति हमें रहम आता है, सहानुभूति होती है, हमें उनके दुख देख करके दया आती है। तो ये है सब, हम सोचते हैं, इच्छा होती है, स्मृति रहती है, कर्म करते हैं, अनुभव होता है, सहानुभूति होती है। ये अनुभव करने वाली शक्ति, उसको आत्मा कहा जाता है। तो दो अस्तित्व है, चैतन्य शक्ति और आत्मा मिलाकर हमारा कॉम्बिनेशन से अस्तित्व बनता है। हम आत्मा है, हम जड़ नहीं है। तो इस ज्ञान का स्वयं के बारे में प्रथम सत्य हमें यही समझना है कि मैं आत्मा हूं। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम सत्य यही है कि मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य शक्ति हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, मैं चमकता हुआ चैतन्य सितारा, इस धरती का सितारा है। वो आसमान के सितारे हैं, हम धरती के चैतन्य सितारे हैं। तो आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, न कि ट्राइंगल है, स्क्वायर है, अष्टकोण है या षटकोण नहीं है। अति सूक्ष्म आकार किसको कहेंगे? बिंदु को, पॉइंट को कहेंगे। हम आत्मा शरीर धारण करने के बाद वो चैतन्य शक्ति मस्तक में स्थित होकर शरीर को कंट्रोल करती है या संचालन करती है। हम कह सकते हैं मस्तक शरीर की कंट्रोलिंग मेन ऑफिस है। शरीर के मस्तक में पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच आत्मा स्थित रहती है, परंतु सरफेस पॉइंट ब्रुकुटी है, इसलिए मैं ब्रुकुटी में स्थित होकर शरीर कंट्रोल करने का कार्य करती हूँ। चित्र में दिखाया है कि आत्मा मस्तक में स्थित होकर शरीर को संचालन करती है। इसी की यादगार भक्ति में हम यहाँ तिलक करते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं, परंतु हम तिलक क्यों लगाते हैं, अक्षत कुमकुम क्यों लगाते हैं, अर्थ उसका नहीं जानते। मैं आत्मा हूँ इस स्मृति के प्रभाव में हम मस्तक में तिलक करते हैं। अक्षत माना अविनाशी आत्मा को ज्ञान रंग से रंगना है। हम तिलक कर लेते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं, पर इसका अर्थ नहीं जानते हैं। अब हमें अर्थ से ये क्रियाएं करनी है। मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। अब मस्तक में स्थित होकर हम आत्मा कर्म करते हैं। हम सभी आत्माएं हैं, एक ही पिता परमात्मा के बच्चे हैं। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, इसलिए हम दुनिया में हमारे देश में ब्रदरहुड स्थापन करना चाहते हैं। या तो हम विश्व बंधुत्व भाईचारे की भावना स्थापन करना चाहते हैं। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, परंतु ये कहने मात्र से भाईचारा नहीं हो रहा है, आपस में झगड़े ही होते रहते हैं। हम आत्मा आत्मा भाई भाई इस सोल कॉन्शियस लेवल से ही हम विश्व में भाईचारा ला सकते हैं। बाकी आप देखिए, बॉडी कॉन्शियस लेवल में तो आज घर घर में झगड़े हैं, भाइयों का आपस में झगड़ा है। हम जिस मकान में रहते हैं पड़ोसी से झगड़ा है, प्रांत भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, जाति भेद के ऊपर कितने लड़ाई झगड़े हैं। इसलिए ये देह के भान में रहने से लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर हमें भाईचारा लाना है तो अपने को आत्मा समझना है और सभी को आत्म नजर से देखना है। देह दृष्टि रखने से अपने परिवार में भी स्त्री और पुरुष के झगड़े हैं, क्योंकि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये भाई है, ये बहन है, ये बेटा है, ये बेटी है। कितना हमारी दृष्टि में अंतर होता है। अगर हम आत्मा आत्मा भाई भाई इस दृष्टि को, वृत्ति को या स्मृति को प्रैक्टिस करें और उसी नजर से सबको देखें तो हमारे परिवार में भी झगड़े कभी नहीं होंगे। इस चित्र में हमने आत्मा और शरीर का कंपैरिजन किया है। बीचों बीच आप देखिए कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। तो ये देह दृष्टि से देखने से ही सभी विकार मन में आते हैं और हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। हम एक ही परमात्मा माता पिता के बच्चे हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने भी हम मस्तक झुकाकर आंखें बंद कर गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इससे क्या अर्थ सिद्ध होता है? स्त्री पुरुष दोनों गाते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। माना एक ही माँ बाप के, त्वमेव माता त्वमेव पिता, एक ही परमात्मा के माता पिता के बच्चे हम आपस में भाई बहन है। और कंपैरिजन देखिए, कार और ड्राइवर। हम ड्राइवर हैं, शरीर रूपी कार नहीं है। एक ड्राइवर डे एंड नाइट गाड़ी चलाता है, लेकिन अपने आप को मोटर कार नहीं समझता है। 24 घंटा गाड़ी चलाने के बाद भी अपने को गाड़ी से अलग ड्राइवर समझता है, अपने को मोटर नहीं समझता है। ड्राइवर का खान पान अलग होता है, मोटर का खान पान अपना है। वो पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं। मकान और मालिक का कंपैरिजन, मैं मकान हूं ऐसा नहीं कहते हैं। इस हॉल में हम बैठे हैं, समझते हैं हॉल अलग है, हम अलग हैं। ये सोफा कुर्सी पर आप बैठे हैं, अगर आप सोफा कुर्सी से अटैच हो जाएं और कुर्सी सहित उठकर चलकर जाना चाहे तो मुश्किल होगा या सहज होगा? मुश्किल होगा ना, क्योंकि कुर्सी सहित अटैच होने से कुर्सी का बोझ भी उठाना पड़ेगा। अगर हम उससे डिटैच हो जाएं, उनसे अलग होके सहज ही उठ के जा सकते हैं, तो आज जीवन बोझ बन गया है, क्योंकि हम गृहस्थ की प्रवृत्ति में अटैच हो गए हैं। अपने परिवार के भाती जो है, परिवार से हम अटैच हो गए हैं, इसलिए उनके हर हालत का प्रभाव हमारे मन पर आता है। शरीर एक ड्रेस है, मैं आत्मा इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर हूँ। वैरायटी पार्ट रोल हम प्ले करते हैं और रोल अनुसार वो ड्रेस पहनते हैं। हम ये वैरायटी ड्रेस नहीं है, वैरायटी रोल्स नहीं है जो प्ले करते हैं। प्ले करने वाली आत्मा है। हम रोल्स प्ले करते हैं जैसे एक्टर वैरायटी रोल्स प्ले करते हैं। इससे वो ही रोल अपने को समझता नहीं। राजा का रोल प्ले करने वाला अपने वो ही ड्रेस में, राजा हूं मैं, इस गर्व में, ईगो में घर जाकर सबको ऑर्डर करने लगे तो कोई मानेगा उसका कि भाई आप उस फिल्म में राजा थे, सच में आप राजा नहीं हैं। हम परिवार में भी वैरायटी रोल्स प्ले करते हैं। अभी अभी आप माँ बाप के सामने हैं तो आप बेटे हैं, बेटियां हैं। अगर आप आपस में एक दो के साथ है तो आप पति हैं, आप पत्नी हैं। अपने बच्चों के सामने आप जाते हैं, माता है, पिता है। आप समाज की मीटिंग में जाते हैं, आप एक नागरिक हैं। आप अपनी ऑफिस में जाते हैं, आप बॉस हैं या चेयरमैन हैं। ये आपके रोल्स हैं। ये वैरायटी रोल्स हर जन्म में हम प्ले करते हैं, पर हम ये रोल्स नहीं हैं, शरीर ड्रेस नहीं है, हम आत्मा एक्टर हैं। गीता में भी कहा है, आत्मा के लिए रथी और देही शब्द यूज किए गए हैं। रथी माना आत्मा, रथ माना शरीर। हम इस रथ को चलाने वाली रथी हैं। इसलिए जब डेड बॉडी को घर से निकालते हैं, उठाकर ले जाते हैं, तब हम कहते हैं फलाने की अर्थी उठी। अर्थी माना डेड बॉडी, जिसमें चैतन्य शक्ति आत्मा नहीं है। शरीर एक पिंजरे के समान है, आत्मा पंछी है, इसलिए आत्म पंछी निकल गया। हम आत्मा हंस को कहते हैं, हंसा चालो ने हवे मोतीड़ा नहीं रे मले। गुजराती में ये काव्य है गंगा सती का, जो कहती है कि हंस आत्मा चलो अब मोती नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से ये वैरायटी कंपैरिजन किया है। हमें समझना है हम आत्मा हैं, हम सभी आत्मा हैं। शरीर धारण करके हम शरीर से स्त्री हैं, शरीर से पुरुष बनते हैं। हम एक ही परमात्मा के बच्चे, भाई भाई है, एक ही परम धाम घर के निवासी हम विश्व कुटुंब कम कहते हैं। वसुधैव कुटुंब कम का विचार हम सनातन धर्म वाले ही देते हैं। तो ये हैं मूल सत्य। जैसे शरीर पांच कर्मेंद्रियों का समूह है, हाथ अलग नहीं है, आंखें अलग नहीं है, कान अलग नहीं है, ये शरीर से ही अटैच है। शरीर से अगर हाथ टूट के अलग हो जाए तो वो काम नहीं करेगा। माना ये कर्मेंद्रियां बॉडी के ही ऑर्गन्स है। पांच ऑर्गन्स का समूह, इसको हम शरीर कहते हैं, ज्ञानेंद्रिया कहते हैं, कर्मेंद्रियां कहते हैं। तो आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीन शक्तियों का चैतन्य समूह है। मन प्लस बुद्धि प्लस संस्कार मिलाकर आत्मा कहा जाता है। मन और बुद्धि आत्मा से अलग नहीं है, मन और बुद्धि ही आत्मा की चैतन्यता कही जाती है। इसलिए मन, बुद्धि और संस्कार मिलाकर आत्मा कहा जाता है। मन क्या है? आत्मा की सोचने की शक्ति, विचार शक्ति, आत्मा की संकल्प शक्ति को मन कहा जाता है। जब मन सोचने का कार्य करता है, इससे ब्रेन स्टिम्युलेट होता है और वो स्पंदन कर्म अनुसार उस कर्मेंद्रिय को पहुंचती है, तब कर्मेंद्रियां एक्टिवेट होती हैं। तो क्या हम केवल आवश्यक ही सोचते हैं, पॉजिटिव ही सोचते हैं? हरेक अपने संकल्पों को चेक करिए। हम आवश्यक तो हमें जरूर सोचना है, पर अनावश्यक, व्यर्थ, बिन जरूरी, बिन आवश्यक विचार भी हम करते रहते हैं। हमारा ज्यादा समय पर चिंतन, आपस में मिलते हैं, तेरी मेरी करते हैं, पर चिंतन, संसार चिंतन, इस प्रकार व्यर्थ चिंतन करते रहते हैं। तो हमें आत्मा की सोचने की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि विचार ही कर्म का बीज है। मन में पहले विचार उत्पन्न होता है। समझो आपको शिविर में आने का हमारे भाई बहनों ने निमंत्रण दिया। पहले आपके मन में बहुत विचार चले होंगे, अभी तो ये कार्य है, वो कार्य है, बिजी है, शादियां हैं, हम नहीं जा सकते हैं। पर फिर आपने निर्णय किया कि ये तो हेडक्वार्टर का कार्यक्रम है, हमें जरूर जाना चाहिए। आपने निर्णय किया कि चलो हम जाते हैं। आप यहाँ आए, वो कर्म हुआ। यहाँ जो कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये आपके कर्म हुए। इसका जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, वो आप आत्मा में लेकर जाएंगे। तो मन के अनेक संकल्पों पर निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहा जाता है। अनेक विचार कर्म में इसी समय नहीं आते हैं, पर हम निर्णय करते हैं, चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उस प्रवृत्ति को आत्मा की निर्णय शक्ति कहा जाता है। आत्मा नॉलेज के आधार पर विचार को परखती है, निर्णय करती है। तो अब हम आज हमारी निर्णय शक्ति भी पतित बन गई है, भ्रष्ट हो गया है। इसलिए हम आरती में, भजन में भी गाते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। इस प्रकार हिंदी भाषा में, भजन में, आरती में हम गाते हैं। हम पतित बन गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं। जब कोई व्यक्ति मूंझता है, किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता है, तो वो कहता है कि मैं निर्णय नहीं कर सकता हूँ। हम कहते हैं इनकी बुद्धि मारी गई है, इनकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। तो आत्मा की निर्णय शक्ति को बुद्धि कहते हैं। अब बुद्धि को शुद्ध करना है, शक्तिशाली बनाना है, तो हमें अपनी बुद्धि का योग परमात्मा से जोड़ना है। कल अभी सेकंड लेसन में आप परमात्मा का सही परिचय प्राप्त करेंगे। वो बुद्धि शुद्ध करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए हमें उस सत्य परमात्मा से, पावन परमात्मा से, सर्वशक्तिवान परमात्मा से जोड़ने की जरूरत है। और सभी दुनियावी विद्यालय, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी में आप जो कुछ पढ़ते हैं, दुनियावी विषयों में आपकी बुद्धि का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। पर इस विश्वविद्यालय में, जहां ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है, उस सत्य ज्ञान से और योग से बुद्धि का डिविनाइजेशन होता है, दिव्यकरण होता है। और विचार तो बीज के समान है, पर उस बीज को जब कर्म में लाते हैं और जो कुछ कर्म करते हैं, उसका प्रभाव आत्मा में रिकॉर्ड होता है, उसको संस्कार कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। आज हमारे जो मूल संस्कार है, स्वभाव है, वो सतो प्रधान है, जो धीरे धीरे इस कर्म क्षेत्र में प्रकृति और आत्माओं के संग में आने से रजो और तमो बन गए हैं। अच्छे परिवार के बच्चे भी स्कूल कॉलेज में जाने से खराब संग में बिगड़ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ऐसा संघ वहां मिलता है, ऐसा वातावरण मिलता है कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, उनकी आदतें बिगड़ गई। तो कर्म के संचित प्रभाव को स्वभाव संस्कार कहते हैं, इनको हम हैबिट्स कहते हैं, सबकॉन्शियस कहते हैं, जो आत्मा में संचित रहता है। अंत में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब और कुछ भी साथ नहीं ले जाती है। इस दुनिया से कमाया हुआ, संग्रह किया हुआ यहां ही रह जाता है। मित्र संबंधी भी स्मशान तक अग्निदाह के कार्यक्रम में आते हैं, परंतु आत्मा के साथ तो किए हुए कर्मों का प्रभाव संस्कार ही जाते हैं। अच्छे कर्मों का प्रभाव हमारी सद्गति करता है और बुरे कर्म का संचित प्रभाव आत्मा की दुर्गति करता है। तो संस्कार ही हमारी गति और पुनः जो हमें जीवन स्थिति प्राप्त होती है उसका आधार है। अभी तो कर्म शुरू भी नहीं हुए और जन्मते ही बच्चे, आजकल कोई डायबिटिक है, किसी को चश्मे लग जाते हैं, किसी का हार्ट वीक, ऐसी जन्म स्थिति क्यों प्राप्त हुई? परिवार भी कोई सच्चरित्रवान शाहूकार घर और किसी को बदचलन वाला गरीब कुसंस्कारी परिवार क्यों मिलता है? ये ही आत्मा संस्कार रूप में कर्मों का हिसाब साथ ले जाती है और ऐसी गति स्थिति और परिवार उसको प्राप्त होता है। तो हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? हम समझे, विचार कर्म का बीज है, कर्म ही संस्कार बनते हैं और जैसे संस्कार पुनः ऐसे ही विचार, इच्छाएं और स्मृति हमें आती रहती हैं। आदत पड़ जाती है तो वो ही अर्ज होती रहती है, वो ही इच्छाएं होती रहती हैं। उनको हम हैबिट बना देते हैं तो हमें फिर वो ही संस्कार जागृत होते रहते हैं। तो ये हैं मुझ आत्मा की शक्तियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार कहते हैं, मीन्स ये मैं आत्मा के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉईज हैं, और ये तीन कर्मचारी मिलकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराते हैं। अब आज तो हम पतित भ्रष्ट बन गए हैं, चारों ओर भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार फैल गया है। तो अब हमारे संस्कारों को कैसे सुधारें? उसके लिए हमें समझना है कि आत्मा के मूल सात गुणधर्म हैं। हमारी ओरिजिनल नेचर शांति की है, इसलिए जीवन में हमें शांति चाहिए। पर हम कहते हैं कि हमें गुस्सा आ जाता है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव तो कर्मों से बना और कर्म तो मैंने किया। बार 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 गुस्सा करने से हैबिट बन गई और गुस्सा फिर आता रहता है। हमारा ओरिजिनल नेचर शांति है। अगर आप ओम शांति हर परिस्थिति में खुद को याद कराएंगे तो आपका किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आप किसी पर क्रोध नहीं कर सकेंगे। विज्ञान बताता है कि 24 आवर्स कोई भी गुस्से में नहीं रह सकता है। हम कितने भी गुस्से में आ जाएं, परंतु आखिर तो शांत हो जाते हैं, क्योंकि शांति हमारा ओरिजिनल स्वभाव है। हम गुस्से में नहीं रहते हैं, शांत हो जाते हैं। तब हमारे साथ रहने वाले कहते हैं कि अब गुस्सा आपका उतर गया, आपका स्वभाव शांत हो गया, आप ठंडे हो गए। आपसे एक बात पूछे, घर घर में पति पत्नी के बीच में, माँ बेटे के बीच में गुस्सा होता रहता है। अब हमें याद रखना है, शांति हमारी ओरिजिनल नेचर है। हम जीवन में सुख चाहते हैं, न कि दुख। धन कमाने से हम साधन खरीद सकते हैं, परंतु साधनों से सुविधाएं घर में होती हैं, पर इन सुविधाओं का सुख आत्मा अनुभव करती है। साधनों से सुख नहीं होता है, तब तो सभी धनवान सुखी होते। अमेरिका धनाढ्य देश है, वो आज सुखी होना चाहिए, पर अमेरिकन्स मेंटली काफी रोग वाले होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि वहां मानसिक रोगी बहुत हैं। तो धन सुख नहीं देता है। धन से साधन कमाते हैं, साधन से सुविधाएं होती हैं, परंतु सुख का अनुभव करने वाली तो आत्मा है। सुख से आनंद हमें आता है, आनंद हमें संबंधों में, अगर ये शांति है और प्रेम है तो घर में हमें प्रेम का अनुभव होता है। आज जो संबंध हमने सुख के लिए जोड़े थे, बनाए थे, वो ही सुख आज दुख का कारण बन गए हैं। घर घर में दुख शांति है, लड़ाई झगड़े हैं, है कि नहीं? हाँ, गृहस्थी भाई बहनी जवाब दो। घर घर में लड़ाई झगड़े हैं, बाप बेटे का झगड़ा है, माँ बेटे का झगड़ा है, माँ बेटी का झगड़ा है, पति पत्नी के झगड़े हैं, घर घर में ये लड़ाई झगड़े हैं। उसके लिए आत्मा को सत्य ज्ञानी और शुद्ध पवित्र बनाने की जरूरत है। आत्मा ओरिजिनल ज्ञान स्वरूप है। हमारे में सब कुछ जानने की, सीखने की, अनुभव करने की जिज्ञासा रहती। बचपन से ही बच्चे जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। तो ज्ञान आत्मा का नेचर है, आत्मा का ओरिजिनल गुण है। ज्ञान से ही जब सत्य ज्ञान हम प्राप्त करते हैं तो सत्य ज्ञान से हमारा जीवन पवित्र बनता है, पवित्रता से शांति और सुख आता है, इससे हमें आनंद और प्रेम अनुभव होता है। जब ये छह गुण हमारे में धारण हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा में है ही, पर हम आत्मभिमानी नहीं हैं, इसलिए देह अभिमान में हम विकृत बन गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ गया है, हम विकारी बन गए हैं। जितना आत्मस्थ स्वस्थ बनेंगे, स्व में स्थित होंगे, तो ये हमारे ओरिजिनल सात गुण इमर्ज होंगे। छह गुण के बाद हम शक्तिशाली अनुभव करते हैं, फिर शक्तिशाली आत्मा बनेंगे तो कोई परिस्थितियां, कोई माया के विघ्न, कोई परिवार की समस्याएं हमारे पर प्रभाव नहीं डालेगी। इसलिए हमारा पहला अभ्यास है आत्मचिंतन करना, आत्मस्थ होना, आत्मभिमानी सोल कॉन्शियस बनना। ये है सेल्फ रियलाइजेशन का अनुभव। सबसे नीचे आसमानी रंग से ये दुनिया दिखाई है। हम इस दुनिया में कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं, इसको हमारा कर्म क्षेत्र कहा जाता है। और सबसे ऊपर लाल रंग से जो दुनिया लोक दिखाया है, जहां हम बिंदु 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 आत्माएं निवास करती हैं, और सबसे ऊपर परम ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा दिखाए हैं, तो ये हम आत्माओं का और परमपिता परमात्मा का घर है, निवास स्थान है। इस परलोक से जहां अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व छाया हुआ है, इस ब्रह्म लोक या ब्रह्म तत्व हमारा निवास स्थान है। परम धाम, शांति धाम हम उसको कहते हैं। यहां हम साइलेंस में रहते हैं क्योंकि हमारे पास ऑर्गन्स नहीं हैं। इसलिए हम आत्माएं परम धाम में शांति की स्थिति में रहते हैं और पवित्र शुद्ध सत्य स्थिति में रहते हैं। इससे ही जब हम इस लोक में आते हैं तो प्रथम हमारी स्थिति सुख आनंद प्रेम की होती है। फिर धीरे धीरे जब हम द्वापर युग में आते हैं, द्वापर के वातावरण रजो प्रधान लोगों के संग में आते हैं, फिर हम तमो प्रधान कलियुगी बन जाते हैं। तो परम धाम हमारा असली घर है, पवित्रता, सत्यता, पवित्रता और शांति हमारे असली गुण है। तो हम कहाँ से आए हैं? परम धाम से आए हैं। जब आते हैं तो बच्चे की मुट्ठियाँ बंद होती हैं, हम अपना कर्मों का हिसाब लेकर जाते हैं, और जब नाटक के अंत में हम संपूर्ण भाग्य कर्म का हिसाब लेके जाएंगे। ये है आत्मा का परिचय। अब आपने अपने आप को जान लिया है, आप 2 मिनट आत्मचिंतन करेंगे। अभी सीधे कमर बैठ जाएं, सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। योग माना आत्मा का परमात्मा से बातचीत, डायलॉग, वार्तालाप, चिंतन। आज आत्मचिंतन हम करेंगे। जब आप परमात्मा का परिचय पाएंगे, योग की विधि सीखेंगे, फिर आज के दिन के सभी टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आंखें खुली रखनी है, नॉर्मल रखनी है, आंख बंद करके सिर झुकाकर नहीं बैठना है। मैं आपको कमेंट्री से योग के लिए गाइड करूंगी। इस कमेंट्री को ध्यान से आप सुनना, मुख से रिपीट नहीं करना है, मन में और बुद्धि में उसको रिवाइज करना है, उसका अर्थ समझकर अनुभव के स्थिति में स्थित होना है। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूं, बोलना नहीं है, मन में रिवाइज करें और रियलाइज करें। शरीर धारण करके इस विश्व नाटक में मैं आत्मा एक्टर बनती हूँ। कर्मेंद्रियों से कर्म करती हूँ। ये दुनिया कर्म की दुनिया है, टॉकी वर्ल्ड है। हम आवाज में आते हैं। इस प्रकृति के प्रभाव में आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव में परिवार समाज में जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके प्रभाव में आकर अपने असली मूल गुण गंवा देती हैं। वो सतो प्रधान से रजो प्रधान बनती हैं। आज कलयुग के अंत में हम पतित तमो प्रधान बन चुके हैं। अब हमारा ओरिजिनल घर परम धाम है। इस पांच तत्वों से पार, सूर्य चांद सितारे से भी दूर, असली घर ब्रह्म महतत्व में हम आत्मा सितारा रहते हैं। हमारी ओरिजिनल इनेट क्वालिटीज सात है। हम ज्ञान स्वरूप, शुद्ध पवित्र स्वरूप और शांत स्वरूप में यहाँ स्थित रहते हैं। मैं शांत हूँ, पवित्र शुद्ध हूँ, जब हमें सत्य ज्ञान प्राप्त होता है, परमपिता परमात्मा आकर हमें सत्य बताते हैं, इससे हमारे में परख शक्ति निर्णय शक्ति आती है, हमारा जीवन सही बनने लगता है। जब कर्म सही होते हैं तब ही सुख आनंद और प्रेम अनुभव होता है, हमारे संस्कार अच्छे बनने लगते हैं। तो मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूँ, परमात्मा की ईश्वरीय संतान हूँ, वहां से इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर मैं कर्म करती हूँ। मैं करता ही भोक्ता बनती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।